ये आकाशवाणी है। अब आप लोकसभा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा ने आज वर्ष 2025-26 के लिए 2.8926 लाख करोड़ रुपए के अनुपूरक अनुदान की मांग तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक को आज ध्वनिमत से पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अनुपूरक अनुदान मांगे वर्ष 2025-26 के लिए दूसरे बैच पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने पिछले एक दशक में स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन और सतत विकास बनाए रखा है और पश्चिम एशिया के कारण अचानक आए संकट से निपटने के लिए आर्थिक स्थिरता कोष को मजबूत करने का काम किया है। इन अनुपूरक मांगों में 59,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस कोष के लिए की गई है। उनका कहना था कि वैश्विक घटनाओं या अन्य कारणों से आर्थिक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उस स्थिति में देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत तथा स्थिर बनाए रखने के लिए यह निधि अत्यंत उपयुक्त होती है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इन मांगों पर चर्चा में 33 सदस्यों ने हिस्सा लिया, लेकिन ज्यादातर सदस्यों ने आम बजट पर ही अपनी बात रखी। उनका कहना था कि सदस्यों को बताना जरूरी है कि अनुपूरक अनुदान मांगों का ये दूसरा बैच है और ये चालू वित्त वर्ष के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि वो खुले दिमाग से तथा लचीलेपन के साथ अनुपूरक मांगे लाती हैं। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति, स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन, सतत विकास और मध्यम मुद्रास्फीति से चिन्हित रही है। इस प्रगति का श्रेय संरचनात्मक सुधारों और मजबूत सार्वजनिक निवेश को जाता है। अब संरचना विकास में गति बनाए रखने के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को पिछले बजट के 11 करोड़ 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2026-27 में 12.2 लाख करोड़ रुपए करने के साथ ही सरकार अब संरचना जोखिम गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। अवसंरचना परियोजनाओं में निवेशकों का विश्वास भी मजबूत होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए 41,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुपूरक अनुदान मांगे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिकों के कल्याण पर सरकार का विशेष ध्यान है और इसमें 6,140 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए भी इसमें निधि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की स्थिति को मजबूत करने के लिए उर्वरक सब्सिडी पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसानों को उर्वरक सब्सिडी के लिए 19,230 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। किसानों को असुविधा न हो इसके लिए भारतीय खाद्यान्न निगम के जरिए गरीब कल्याण अन्न कोष बनाया गया है, जिसके अंतर्गत गरीबों को राशन दिया जा रहा है। घरेलू स्तर पर खाद के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। यूरिया उत्पादन 225 लाख टन से बढ़कर 3 लाख टन से अधिक हो गया है। उनका कहना था कि सरकार ने खाद के 6 कारखाने स्थापित किए हैं और इनसे हर साल 12.7 लाख टन खाद का उत्पादन हो रहा है और इसे जल्द ही 25 लाख टन तक ले जाने की योजना है। श्रीमती सीतारामन ने मनरेगा का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार जी राम जी नाम से नया कानून ग्रामीण श्रमिकों के लिए लाई है और उसमें 95,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और ये कानून अप्रैल से लागू होगा, लेकिन मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण श्रमिकों को दिक्कत न हो इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान अनुपूरक अनुदान मांगों के इस बैच में किया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत बजट में 67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान पिछले वर्ष के लिए था, जिसे बढ़ाकर 67,670 करोड़ रुपए किया गया है। ये योजना वर्ष 2028 तक चलेगी। वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों का जिक्र किया और कहा कि इसे मजबूत करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उन्होंने सदन को सूचित किया कि 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% अनुमानित है, जो 2025-26 में 4.4% से बेहतर है। संशोधित अनुमानों के अनुसार गैर ऋण प्राप्तियां 34 लाख करोड़ रुपए और कुल व्यय 49,006 लाख रुपए है, जिसमें लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय शामिल है। वित्त मंत्री ने कुछ निर्दलीय सदस्यों से चर्चा के दौरान उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए बताया कि बिजनौर में एम्स खोलने की मांग है, लेकिन फिलहाल वहां मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया है। लोकसभा में आज ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों की सुरक्षा संशोधन विधेयक भी पेश किया गया। विधेयक के जरिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अधिकारों को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही आज निर्धारित समय से पहले स्थगित कर दी गई। इसराइल, अमरीका और ईरान युद्ध के कारण देश में रसोई गैस की हो रही किल्लत को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही पहली बार पूर्वाह्न 11 बजे तक स्थगित की गई। सदन के दोपहर 12 बजे समवेत होते ही विपक्षी सदस्य फिर हंगामा करने लगे, जिस पर कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने इसी मुद्दे पर फिर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्त वर्ष 2025-26 की अतिरिक्त अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब दिया। इसके बाद अतिरिक्त अनुदान मांगे पारित की गई और इससे जुड़ा विनियोग विधेयक 2026 भी पारित किया गया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा, जिस पर पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेनेट्टी ने कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर रसोई गैस की किल्लत को लेकर हंगामा करने लगे। श्री बिड़ला ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन सदस्यों ने शोर शराबा तेज कर दिया। श्री बिड़ला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा, मैंने पहले भी आग्रह किया था और आज फिर आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। आज भी विपक्ष के 8 सदस्यों के प्रश्न सूचीबद्ध हैं। प्रश्नकाल में जहां देश के मुद्दे, क्षेत्र की समस्याएं उठाई जाती हैं, वहीं सरकार की जवाबदेही भी होती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सदस्यों को अपने प्रश्न रखने का मौका दें। यह संसदीय मर्यादा नहीं है। प्रश्नकाल के बाद आप जो मुद्दे उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, लेकिन प्रश्नकाल बाधित करना ठीक नहीं है। हंगामा कर रहे सदस्यों को कड़ी चेतावनी देते हुए श्री बिड़ला ने कहा कि सदन की मेजों पर चढ़ोगे तो कार्यवाही होगी। संसद परिसर में हो रहे हो या सदन में हो, संसद की पवित्रता, मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी सबकी है और जिस तरीके से आचरण आप लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हंगामा कर रहे सदस्यों से उन्होंने कहा कि क्या वे सदन नहीं चलाना चाहते। सदस्यों ने जब उनकी बात नहीं मानी तो हंगामा जारी रखा और सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही सदन दोबारा शुरू हुआ, कांग्रेस और अन्य विपक्षी सदस्य रसोई गैस की कमी का मामला उठाते हुए इस पर चर्चा कराने की मांग को लेकर शोर शराबा और नारेबाजी करने लगे। कई सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच ही विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की आज हुई बैठक में तय किया गया था कि अनुपूरक अनुदान मांगों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का जवाब होगा और उसके बाद निजी सदस्यों के विधेयक पर चर्चा होगी, लेकिन कांग्रेस सदस्य हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदस्य संसद परिसर में भोजन लेकर आते हैं, गिलास और थाली लेकर आते हैं, इस तरह के नाटक को जनता देख रही है। श्री रिजिजू ने कहा कि वो दुखी मन से कह रहे हैं कि कांग्रेस के सदस्य अपने नेता के साथ साथ खुद भी बिगड़ गए हैं। अभी समय है, सुधर जाओ, जनता आपको सत्ता नहीं देने वाली। श्रीमती राय ने कहा कि अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद वित्त मंत्री का जवाब आना है। विपक्षी सदस्यों को कार्यवाही में लगातार बाधा डालते हुए जनता देख रही है। सदन की मर्यादा बनाए रखिए, ये आचरण उचित नहीं है। उनके आग्रह का हंगामा कर रहे सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप लोकसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। अब सुनिए राज्यसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। वाचिका है करिश्मा राय।
अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज विभिन्न दलों के सदस्यों ने बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से सख्ती से निपटने तथा यौन शोषण का शिकार हुए बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के एक सांसद ने बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष बाल अपराध जांच इकाई बनाने का सुझाव दिया। उच्च सदन में विभिन्न दलों के सदस्यों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान के निजी विधेयक, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान यह बात कही। चर्चा में भाग लेते हुए आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार मित्तल ने कहा कि बच्चों के खिलाफ हर साल होने वाले लाखों अपराध यह स्पष्ट बताते हैं कि अपराधियों में भय नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष बाल अपराध जांच इकाई बनाई जाए। श्री मित्तल ने कहा कि बच्चों के खिलाफ अपराध की जांच और सुनवाई समयबद्ध हो ताकि अपराधियों के मन में भय प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ होने वाले अधिकतर अपराध परिचित, रिश्तेदारों, पड़ोसियों द्वारा किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए कानून के साथ साथ बच्चों को भी शिक्षित करना चाहिए। आप सदस्य ने कहा कि आज बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाले अपराधों से बचाए जाने की आवश्यकता है। मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए एक महिला रोग विशेषज्ञ के अनुभवों का हवाला देते हुए कहा कि कई महिलाएं पूरी तरह स्वस्थ होने के बावजूद गर्भधारण नहीं कर पाती क्योंकि बचपन में हुआ उनका यौन शोषण उनके लिए इसमें सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। सुधा मूर्ति ने कहा कि ऐसे लोगों को घर, स्कूल और अन्य जगहों पर यह समझाया जाना चाहिए कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों का आत्मविश्वास हर हाल में बढ़ाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की धर्मशिला गुप्ता ने कहा कि बच्चों की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ अब देश के कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में बच्चों की सुरक्षा के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार बरसों पहले अमलीजामा पहना चुकी है और उनके लिए कड़े प्रावधान बना चुकी है। भाजपा सदस्य घनश्याम तिवारी ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने 2019 में कानून में व्यापक बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 1000 से ज्यादा विशेष अदालतों का गठन किया है और वहां डिजिटल ढांचा भी तैयार किया गया है ताकि मामलों में जल्दी फैसला हो सके। उन्होंने कहा कि फौजिया खान ने अपने विधायक में जो मांग की है या जो सुझाव दिए हैं वे पहले से ही कानून में मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने माहवारी स्वच्छता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस वजह से लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए जागरूकता और शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने अस्पतालों में महिला डॉक्टरों की कमी को दूर करने की भी मांग की। भाजपा के रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि अपराध सिर्फ कानून बनाने से नहीं रोका जा सकता बल्कि शिक्षा और संस्कार की भी अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। विधेयक पर चर्चा अधूरी रही। उच्च सदन में आज गैर सरकारी कामकाज शुरू होने पर कांग्रेस की रेणुका चौधरी, जेबी माथेर हीशम, भारतीय जनता पार्टी के धनंजय भीमराव महादेव, भीम सिंह, सुजित कुमार, के लक्ष्मण, सुमित्रा वाल्मीकि, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, अशोक कुमार मित्तल तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी और माकपा जॉन ब्रिटास ने अपने अपने निजी विधेयक पेश किए। राज्यसभा में भोजनावकाश के बाद दोपहर 2 बजे से गैर सरकारी कामकाज होता है। इससे पहले आज सुबह बैठक शुरू होने पर शून्यकाल में भाजपा के ब्रजलाल, संजय सेठ, सिकंदर कुमार, बाबू भाई, जयसंग भाई देसाई, सुरेंद्र सिंह नागर, एस सेल्वागन बेथी और रागैया कृष्णा, जदयू के संजय यादव, राजद के मनोज कुमार झा, बसपा के रामजी, बीजद के मुजीबुल्ला खान, अन्ना द्रमुक के आईएस इनबा दुरई, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, निर्दलीय सदस्य गुलाम अली ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि भारत बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा ही वर्तमान में पश्चिम एशिया संकट के समय हुआ जब देश को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के लिए आपातकालीन उपाय करने पड़े। उन्होंने कहा कि जनवरी 2014 2014 में दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 420 रुपए थी, जो अब 914 रुपए हो गई है। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने निजी अस्पतालों में महंगे इलाज और निजी एवं चिकित्सा बीमा कंपनियों द्वारा मरीजों के दावे मनमाने तरीके से खारिज किए जाने पर चिंता जाहिर करते हुए मांग की कि इस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। स्वाति ने कहा कि आज निजी अस्पतालों और निजी बीमा कंपनियों के बीच गठजोड़ बन गया है, जो आम आदमी इंसान की कमर तोड़ रहा है। आप सदस्य ने मांग की कि सरकारी अस्पतालों की हालत में सुधार किया जाना चाहिए। अभी आप राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा